नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम योंग से मुलाकात की और दीर्घकालिक प्रभाव वाले द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। जयशंकर दक्षिण पूर्व एशिया के दो देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में यहाँ पहुंचे हैं। वो सिंगापुर के नव निर्वाचित राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा साझेदारी बढ़ाने के अवसर तलाशेंगे। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, आज सुबह व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम योंग से मिलकर अच्छा लगा। हमने दीर्घकालिक प्रभाव वाले सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वो भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में इन विचारों को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। जयशंकर अपनी दो देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में वियतनाम से सिंगापुर पहुंचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना देश में वित्तीय समावेशन लाने का सबसे बड़ा साधन बनकर उभरी है। कौटल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन के बाद मंत्री ने कहा कि 50 से अधिक सरकारी योजनाओं के तहत लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं और PMJDY ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जब योजना शुरू की गई थी तो लोगों के एक वर्ग ने भद्दी टिप्पणियां की थी और कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दबाव में होंगे क्योंकि ये जीरो बैलेंस खाते हैं। सीतारमण ने कहा कि हालांकि इन खातों में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि है। मंत्री ने अपने संबोधन में जलवायु, वित्त पोषण और उससे जुड़ी चुनौतियों पर भी विस्तार से बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति में बहुपक्षीय विकास बैंकों सहित बहुपक्षीय संस्थान कम प्रभावी हो गए हैं। सभी ने बृहस्पतिवार को बड़ी कंपनियों के लिए बॉन्ड प्रतिभूतियां जारी कर उधारी जुटाने संबंधों नियमों को उदार कर दिया है। इससे बड़ी कंपनियां अपनी वित्तीय जरूरत पूरी कर सकेंगी। इस नियम के तहत बड़ी कंपनियों के रूप में पात्र इकाइयों को 25% अनिवार्य कर्ज बॉन्ड के जरिए लेना होता है। बड़ी कंपनियां वो हैं जिनके ऊपर बकाया दीर्घावधि का कर्ज कम से कम 100 करोड़ रुपए है और उनकी क्रेडिट रेटिंग AA या उससे ऊपर है। इसके अलावा उनकी ऋण प्रतिभूतियां शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होनी चाहिए। नए ढांचे के तहत सभी ने आवश्यक कर्ज में अधिशेष के मामले में बड़ी कंपनियों के लिए प्रोत्साहन की शुरुआत की है। इसके अलावा अपने बढ़े हुए कर्ज का कम से कम 25% बॉन्ड प्रतिभूतियों से नहीं जुटाने को लेकर उनके लिए हतोत्साहन को कम किया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारियों के एक विश्लेषण से पता चलता है कि कोविड महामारी के समय भी भारतीय कंपनियों ने शोध एवं विकास खर्च में कटौती नहीं की है। सिद्धार्थनाथ, श्रुति जोशी और साधन कुमार चट्टोपाध्याय द्वारा 1,161 कंपनियों के आंकड़ों और खुलासों का विश्लेषण करने के बाद तैयार परिपत्र में कहा गया है कि कोविड की वजह से आर्थिक सुस्ती के बाद भी कंपनियों की शोध एवं विकास गतिविधियों में कोई व्यापक बदलाव नहीं आया है। इसमें कहा गया है, कोविड महामारी के बावजूद शोध एवं विकास गतिविधियों की मजबूती दीर्घावधि में भारतीय कंपनियों के सतत नवोन्मेषण और उत्पादकता वृद्धि की दृष्टि से अच्छी है। हालांकि ये RBI के संस्थागत विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों को अगले 3-4 दशक में उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में सतत वृद्धि हासिल करना और कठिन हो जाएगा। यहाँ एक कार्यक्रम में गिल ने कहा कि उच्च आय वाले देशों में शामिल होने के लिए MSCI को अपनी मध्यम आकार की कंपनियों में घाटे को कम करना होगा। उन्होंने कहा, भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों के लिए आर्थिक वृद्धि कठिन हो जाएगी, आसान नहीं। यदि आप अगले 3-4 दशकों में उच्च आय वाले देश में शामिल होना चाहते हैं तो आपको विश्वसनीय जानकारी के आधार पर नीतियां बनानी होंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को पंजाब में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर परिचालन शुरू होने के बाद दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में तो कटरा 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 40,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये 669 किलोमीटर लंबा है। गडकरी ने बताया कि अभी दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमीटर है। नया मार्ग बनने के बाद ये दूरी 58 किलोमीटर घट जाएगी। गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे का 137 किलोमीटर भाग हरियाणा में जबकि 399 किलोमीटर पंजाब में पड़ता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक्सप्रेसवे का 135 किलोमीटर भाग पड़ता है। दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने गैर कौशल, अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों का न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किया है। बृहस्पतिवार को आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। ये आदेश 1 अक्टूबर से प्रभावी है। मंत्री ने कहा कि ऊंची मुद्रास्फीति और अन्य चुनौतियों से समाज के सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी से श्रमिकों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे अधिक है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।